हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्तसाम्या तिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणि वंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। चिरात् हूणा द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाघसादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताय न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिम् स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्बुद्धिलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषु पुरुषो भुङ्क्ते गुणनशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे प्रपुर्ज्ञान मय सोम्यं यन्मुखं बुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भक्तसेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतकथाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे ஹரி ராம ஹரி ராம 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 ஹரே ஹரே. மூகம் குருது வாசாரம் பங்கு லங்கயதேகிரம் யத் கிருபாதமஹம் வந்தே ஸ்ரீ குருன் தீனதாரிணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைதன்யேஸ்வரம். கிரந்தாய ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாபுராண் கீ ஜெய். दूसरा स्कंध अध्याय 9 जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। भगवान के विषय में जानने के लिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से बहुत सारे प्रश्न किए और अब परीक्षित महाराज को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी किस तरह से उत्पन्न हुए और उन्होंने कैसे सृष्टि का प्रारंभ किया, सृष्टि को सृजन किया, उसके विषय में बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो उन्हें अपना स्रोत समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं। उन्होंने बहुत बहुत ढूंढा कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। अचानक से उनको दो शब्द सुनाई दिए, 16वां और 21वां, जिसको मिलाकर उन्होंने तप शब्द, जैसे उनको लगा कि भगवान उन्हें तपस्या करने का आदेश दे रहे हैं। तो देवताओं के 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या करते रहे और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान बहुत बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने गोलोक धाम के दर्शन कराए, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई माया नहीं है, काल का कोई प्रभाव नहीं है, कोई सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव, जहाँ पर कंटिन्यूअस शुद्ध सत्व है, जहाँ पर समय नहीं बीतता, जहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता, जहाँ पर चिन्मय आनंद भगवान का धाम, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, जो जीव मात्र का लक्ष्य है, वो धाम ब्रह्मा जी को भगवान ने दिखाया। और उस धाम में क्या क्या है, वो धाम कैसा है, क्योंकि आखिर तो वही हमारा गंतव्य है, वही धाम हमारा डेस्टिनेशन है, तो वो कैसा है जो भगवान का धाम है, उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर वर्णन करेंगे। हम इन शब्दों को सुनकर हमारे हृदय में उस धाम को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में सुखी होना संभव नहीं है और जीव मात्र के लिए एक ही लक्ष्य है कि उसे भगवत धाम को प्राप्त करना है। जब मनुष्य देह प्राप्त हो जाता है ना, तो ये सो अवसर जीव को मिलता है कि वो इस धाम को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पर कि भगवान का चिन्मय धाम है, जहाँ पर सब आनंद है, सुख है। तो कैसा है उसके विषय में कल तो ब्रह्मा जी कल तो है ना सुखदेव गोस्वामी ने बताया था कि भगवान के उस धाम में ना तो रजोगुण है, ना तमोगुण है, ना ही सत्वगुण, इनका कोई प्रभाव नहीं है, वहाँ पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है, फिर बहिरंग शक्ति का तो कहना ही क्या, इसका तो वहाँ प्रवेश भी नहीं हो सकता है। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। और आज श्लोक नंबर 11 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्यामावदाता शतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुच सुपेशस सर्वे चतुर्भा हव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्का भरणा सुवर्चस श्यामावदा। శతపత్రలోచనా పిశంగ వస్త్ర సురుచ సుపేషస సర్వే చతుర్భా హవ ఉన్మిషర్మణి ప్రావేక నిష్కా భరణా సువర్చస. శబ్దాత్ శ్యామావదాతా శతపత్రలోచన, శ్యామ అర్థాత్ నీల్వరణ, అవదాతా అర్థాత్ ఆభా సే యుక్త్ జితనే భీ వహాన్ పర్ జీవ్ జాతే నా గోలోక్ మే వో నీల్వరణ్ జైసా భగవాన్ కా స్వరూప్ హోతా నా ఐసా కలర్ ఉన్కా భీ హోతా. శతపత్ర లోచన, శతపత్ర మతలబ్ కమల్ పుష్ప కే జైసీ ఉన్కే లోచన్ మన ఆంఖే హై. పిశంగ వస్త్ర, పిశంగ కేతే వో సబ్ భగవాన్ కే జైసా పీలా వస్త్ర యా పీతంబర్ ధారణ్ కర్తే హై. సురుచ అత్యంత హి ఆకర్షక్, జైసా భగవాన్ జితనా ఆకర్షిత్ హోతే నా సారే భగవాన్ కే పార్షద్ జో గోలోక్ మే రహతే హై వో భీ ఇత్నే సుపేషస ఔర్ కోయి భీ ఉన్మే బూఢా నహీ హోతా, సబ్ తరుణ్ హోతే హై. సర్వే చతుర్భా హవ ఉన్మే శర్మణ్, సర్వే చతుర్భావో సబ్కి చార్ భుజాయే హోతీ హై, చార్ హాత్ హోతే హై. ఉన్మిషన్ అర్థాత్ కాంతిమాన్ హోతే హై, కేసే మణి, మణి మతలబ్ మోతియోం కీ తరహ. ప్రవేక నిష్కా భరణా సువర్చస, ప్రవేక మతలబ్ ఉత్త కోటి కే నిష్క ఆభరణ మతలబ్ ఆలంకరిక భూషణ్, బహుత్ సుందర్ సుందర్ ఉన్నోనే వస్త్ర ఆభూషణ్ ధారణ కీ హోతే హై. సువర్చస ఔర్ వో సబ్ తేజస్వి హోతే హై, తేజ్మయ హోతే హై. అనువాద్ దేఖియే, వైకుంఠ లోక్ కే వాసియోం కో आभामय श्याम वर्ण का बताया गया है. उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलांब रंग के और उनकी शारीरिक रचना अत्यंत आकर्षक है. वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं. उन सब के चार चार हाथ हैं. वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद जी कहते, वैकुंठ लोक के वासी दिव्य अंग प्रत्यंगों वाले ऐसे महापुरुष हैं जो इस लोक में नहीं पाए जाते. उनका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में ही मिलता है. इन ग्रंथों में दिव्यता के जो निर्विशेष वर्णन प्राप्त होते हैं, वे यह इंगित करते हैं कि वैकुंठ लोक की सी शारीरिक रचना ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती है. जिस प्रकार किसी एक लोक के विभिन्न स्थानों में शारीरिक रचना पृथक पृथक होती है, या विभिन्न लोकों के प्राणियों के शरीरों की पृथक पृथक रचना होती है, उसी प्रकार वैकुंठ लोक के वासियों की शारीरिक रचना और भी भौतिक जगत के निवासियों से सर्वथा भिन्न है. उदाहरणार्थ, वहाँ के चार हाथ इस संसार के दो हाथ से भिन्न है. श्रील प्रभुपाद की जय. तो यहाँ बहुत ही सुंदर एक स्वरूप बताया जा रहा है कि वैकुंठ में लोक रहते कैसे हैं. जिस तरह संसार में हम देखते हैं वेस्टर्नीज के लोग अलग तरीके के होते हैं, साउथ अफ्रीका के लोग अलग तरीके के होते हैं, और एशिया के लोग जो हैं उनका, चाइना के लोग अलग होते हैं ना, लेकिन फिर भी उनके दो हाथ होते हैं, दो आंखें होती हैं. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अलग अलग योनियां अलग अलग तरीके होती है. जैसे जल में रहने वालों के जीवों के प्राणी स्वरूप अलग होता है, उड़ने वाले जीवों के प्राणियों का स्वरूप अलग होता है. उसी तरह जो वैकुंठ में रहते हैं उनका स्वरूप सबसे सुंदर होता है, क्योंकि उनका स्वरूप भगवान के समान होता है. वो भगवान के सारूप्य कहते हैं, और भगवान वहां वैकुंठ में सारे लोग का श्यामवरण होता है. कमल के पुष्पों जैसे, पंखड़ियों जैसे उनके नेत्र होते हैं, और अत्यंत ही सुंदर पीतांबर पहने हुए होते हैं, बहुत ही सुंदर आभूषण उन्होंने धारण किए होते हैं। तो जो वहां पर वैकुंठ लोक में जाता है उसे इतना ही दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए उसको भगवान ऐसा ही स्वरूप प्रदान करते हैं। आगे बताते हैं, प्रवाल वेदूर्य मृणाल वर्चस परिस्फुरत कुंडल मौलि मालिना। प्रवाल वेदूर्य मृणाल वर्चस परिस्फुरत कुंडल मौलि मालिना। प्रवाल वेदूर्य, प्रवाल मतलब मूंगा और वेदूर्य मतलब विशेष मणि, ये बहुत ही कीमती जो पत्थर होते हैं। मृणाल मतलब स्वर्गिक कमल, वर्चस मतलब किरणों, परिस्फुरत यानी फूल रही है, कुंडल अर्थात कान के आभूषण, और मौली यानी सिर, मालिना अर्थात हारों से युक्त। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी है और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हुए हैं, जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण श्री भगवान जैसे हैं। वेदूर्य मणि यहाँ पर बताई गई है कि प्रवाल वेदूर्य मृणाल वर्चस, ये जो मणि है वो विशेष तरह भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे भगवान का सारूप्य प्राप्त होता है उसको ऐसे मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हमको कितनी इच्छा होती है कि अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण धारण करें, हमारा अच्छा सा स्वरूप होना चाहिए, लेकिन इस भौतिक जगत का जो स्वरूप होता है उसके वैकुंठ जगत के प्राणियों के सामने उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। जैसे हमारे इस भौतिक जगत में कैसे होता है कि मनुष्य को सबसे सुंदर माना जाता है ना, भले ही ऐसा कहा जाता है कि भाई उसकी आंखें हिरण जैसी हैं, उसकी कमर ऐसी है, उसके मतलब शरीर को थोड़ा थोड़ा मैच करके, मतलब जितने जितने पशु हैं, जितने सुंदर फूल हैं, उनको करके बताया जाता है, लेकिन असल में यही कहा जाता है कि सबसे सुंदर यदि कोई आकृति संसार में है तो वो कौन सी है, वो मनुष्य की है। और इसके अतिरिक्त जो भी प्राणी है वो ही नहीं है, है ना, क्योंकि वो उसके अंदर वो मनुष्य जैसी क्वालिटीज नहीं है। यहाँ तक कि देखो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें मनुष्यों में भी कोई तो मिस यूनिवर्स होती है जो सबसे ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन जो भौतिक जगत की मिस यूनिवर्स होती है वो स्वर्ग की जो अप्सराएं है ना उनके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तुच्छ है, क्योंकि स्वर्ग की अप्सराएं तो बहुत बहुत सुंदर होती है, है ना। तो वो जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं वो उसके आगे जाए तो फिर वो वैकुंठ में जो भगवान के परिकरगण हैं, जो लक्ष्मी महारानी की दासियां हैं, वो स्वर्ग के अप्सरा उनके सामने कुछ नहीं है, उनके सामने निगरणीय है। और जो लक्ष्मी महारानी की दासियां हैं उनके सामने जो लक्ष्मी महारानी है वो निगरणीय, मतलब ऐसा बताया जाता है कि जो वैकुंठ में जो प्राणी है वो सबसे ज्यादा सुंदर है, और उनसे भी ज्यादा अधिक जो सुंदर है वो कौन है, वो जो गौलोक वृंदावन में है, क्योंकि वो भगवान के पार्षद है, निज नित्य मुक्त जो भगवान के पार्षद है वो। तो मुक्ति तो बहुत प्रकार की होती है, सालोक्य सारूप्य सारिष्टि सामीप्य, लेकिन
यहाँ पर जो अभी बताया जा रहा है वो सारूप्य मुक्ति, मतलब जैसा विष्णु भगवान का स्वरूप होता है ना, चार हाथ होते हैं, उनके अंदर शंख चक्र गदा पद्म होता है, उनके कमल जैसे नेत्र होते हैं और पीतांबर उन्होंने पहना हुआ होता है, उनके बहुत ही सुंदर आभूषण होते हैं और मालाएं पहनी हुई होती हैं, तो वैसा स्वरूप, मतलब इस भौतिक जगत के सुंदर से सुंदर व्यक्ति को भी वो जो आभा है वो बिल्कुल परास्त कर देती है। तो हमको कभी ऐसा लगता है ना कि ये कितना अच्छा है, ये कितना सुंदर, ये कितना सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर प्राणी तो वैकुंठ जगत में है और सबसे ज्यादा तेज है उनके अंदर। आगे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, विराज शोभे ब्राजे शुभिर्या परितो विराजते लसत विमाना लिभिर महात्मना विद्योत्तमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सवित्युत प्रावलिभिः यथा नभ ब्राजेश्वभिर्य परितो विराजते लसत विमाना वलिभिर् महात्मना विद्योत्तमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सवित्युतद्भिर् ब्रावलिभिर् यथा नभ। शब्दार्थ ब्राजेश्वभिर्य, ब्राजेश्वभि मतलब आभा से, यमन वैकुंठ लोक, परितो विराजते यानी गिरा हुआ है, विराजते मन स्थित है, किस चीज से गिरा हुआ है, लसत विमान, लसत मन बहुत ही तेजमान, विमान मन विमानों से, क्योंकि अब इतने सारे जो विष्णु स्वरूप हैं वो ट्रेवल करते होंगे तो किससे करते होंगे, उनके अलग अलग विमान होते हैं जो बहुत ही चमकदार है, लसत तेजवान है। और आगे अविली भी अर्थात समूह, बहुत सारे महात्मा नाम यानी भगवान के महान भक्तों का, विद्योतमान मतलब बिजली के, विद्युत कहते हैं बिजली को, बिजली के समान सुंदर, प्रमद मान स्त्रियां, उत्तम यानी स्वर्गिक, वहां पर बहुत ही सुंदर स्वर्ग की, मतलब भगवान के धाम में जो बहुत ही सुंदर स्त्रियां रहती हैं, विद्यु भी अर्थात मुखणों से, सविद्युता बिजली सहित, अब्रवली भी अर्थात आकाश के बादलों से, यथा जिस प्रकार नभ यानी आकाश। अनुवाद, सारे वैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाते विमानों से गिरे हुए हैं, ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं, स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं, और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो रहा हो। तो इतना सुंदर वातावरण है वहां पर, सब सुंदर है, जो पुरुष लोग हैं वो भगवान के जैसा स्वरूप धारण करते हैं और जो स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी के समान चमचमाती हुई मुखमंडल वाली हैं और उनके सुंदर सुंदर विमान हैं वहां पर। तो कितना सुंदर वातावरण होगा, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोक में चमचमाते विमान रहते हैं जिसमें भगवान के परम भक्त तथा बिजली के समान द्युतमान नैसर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती हैं। विमानों जैसे तरह तरह के अन्य वाहन भी होंगे किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा ना चलाए जाते हों, जैसा कि हमारा अनुभव है इस संसार में। चूंकि हर वस्तु सचित आनंद स्वरूप है, अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुणों वाले होंगे। यद्यपि वहां ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ कुछ भी नहीं है, किंतु इसका यह गलत अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वहाँ केवल शून्य है और विविधता नहीं है। ऐसा सोचना ज्ञान के अभाव का द्योतक है। श्री प्रभुपाद जी पूछते हैं कि वहाँ पर भौतिकता नहीं है, सब कुछ चिन्मय है, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शून्य है। वहाँ पर भी सुंदरता है, वहाँ पर भी ऐश्वर्य है, वहाँ पर विमान है, वहाँ पर सुंदर स्त्रियाँ हैं, वहाँ पर प्रेम का आदान प्रदान है, शून्य नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई ऐसा सोचता है कि वहाँ कुछ नहीं है, खाली शून्य है, खाली तेज है, खाली ज्योति है, तो ऐसा सोचने का कारण ज्ञान का अभाव है, क्योंकि उसे पता नहीं है ना, इसलिए वो उस जगह के वास्तविकता को बता नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी बोलते अन्यथा ब्रह्म में रिक्तता की ऐसी भ्रांति किसी को क्यों हो। अगर कोई जानता है, ज्ञान समझता है, जब ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्म बड़ा भला रिक्त या शून्य कैसे हो सकता है। ब्रह्म के पास तो सारी विविधताएं, सारा ऐश्वर्य होना चाहिए। जिस प्रकार वहाँ विमान, स्त्रियाँ तथा पुरुष हैं, उसी तरह लोक विशेष के अनुरूप नगर, घर तथा अन्य वस्तुएं भी होती होंगी। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और वायुमंडल यानी आकाश को काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। कृष्ण प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध को अपूर्णता का आरोप, कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं होगी जो वहाँ पर ना हो, क्योंकि वो तो चिन्मय धाम है। वहाँ पर तो प्रत्येक वस्तु, प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे वहाँ पर स्त्रियाँ हैं, पुरुष हैं, विमान है, तो नगर भी होंगे, घर भी होंगे, और घर के अंदर जो सारी वस्तुएं होती हैं वो सब होंगी, सब कुछ चिन्मय होगा। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे वाहन नहीं होंगे जिनको चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती होगी या फिर यंत्र की जरूरत पड़ती होगी। वहाँ पर तो सब कुछ चिन्मय है ना, सब कुछ मन की गति से होता है, चिन्मय सचित है, वो सब जागरूक है, वो वस्तुएं भी जागरूक है। यहाँ पर तो हमें इस तरह का कोई आभास नहीं है, हर एक वस्तु जड़ है, थोड़ी सी चिन्मयता जीव आत्मा की है, उसको भी ढका देते हैं, उसको भी निर्जीव बना दिया है, उसके वास्तविक जो निष्क्रिय बना दिया है, उसके भी ज्ञान को ढक दिया है, लेकिन वहाँ पर तो सब कुछ चिन्मय है, सब कुछ आनंदमय है। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर लक्ष्मी के विषय में बता रहे हैं कि वो लक्ष्मी महारानी कैसा उनका स्वरूप है और वो क्या करती हैं। वे कहते हैं श्री यत्र रूपे युरुगाय पादयो करोति मानम बहुधा विभूति भी प्रिंखम श्रिताया कुसुमाकरानुगै वीकीयमाना प्रियकर्म गायति। श्रीयत्र रूपे युरुगाय पादयो करोति मानम बहुधा विभूति भी प्रिंखम श्रिताया कुसुमाकरानुगै वीकीयमाना प्रियकर्म गायति। श्रीयत्र श्री मन लक्ष्मी, यत्र मन वैकुंठ लोक में, वहाँ पर लक्ष्मी जी रूपिणी यानी अपने दिव्य रूप में उरुगाय अर्थात भगवान जिनकी स्तुति बड़े बड़े भक्त करते हैं उनके पादयो यानी भगवान के चरण कमलों में करोती यानी करती हैं। मानम यानी सादर सेवा, वो भगवान जिनकी स्तुति बड़े बड़े भक्त करते हैं उरुगाय उनकी सेवा करती हैं चरण कमलों की, बहुधा विविध सामग्री से विभूति भी अपने पार्षदों के सहित, उनके पार्षद हैं, उनके बहुत सारी सखियां हैं, उनके साथ प्रेंखम यानी प्रसन्नता से संचलन यानी थिरकन से, और श्रिता यानी शरणागत, या यानी जो कुसुमा करा मतलब कुसुम कहते हैं वसंत को, अनुरोग यानी भवरों से, विगीय माना यानी वो केवल सेवा ही नहीं करती बल्कि भगवान का गुणगान करती हैं, प्रिय कर्म अपने प्रियतम के कार्यकलापों के का गुणगान करती गायंती यानी गाती हैं। अनुवाद, दिव्य रूप धारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्वक सेवा में लगी हुई हैं और वसंत के अनुचर भवरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास यानी अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जहाँ पर इतना सुंदर वातावरण है, बहुत सुंदर सुंदर भगवान के पार्षद हैं, विमान हैं, बहुत ही सुंदर मुख वाली वहाँ की स्त्रियाँ हैं, वहाँ पर एक लक्ष्मी जो कि अत्यंत सुंदर है, बहुत शोभायमान है, रूपिणी है, अपने दिव्य रूप के साथ वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं और न केवल सेवा में लगी रहती हैं बल्कि अपनी सहचरियों के साथ भगवान को विविध प्रकार से विलास करती हैं, मतलब किसी तरह अलग अलग तरीकों से भगवान को आनंदित करने का प्रयास करती हैं और भगवान के कार्यकलाप जो भगवान की लीलाएं हैं उनका गुणगान भी करती रहती हैं। तो कितना सुंदर वहां पर कंटिन्यूस भगवान की सेवा, इतनी सुंदर, इतना आनंदमय वो धाम है जहाँ पर आने के लिए भगवान हमें इनवाइट करते हैं कि ये मनुष्य जीवन तुम्हें इसीलिए मिला है कि आप उस धाम को प्राप्त करो जहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है। आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा जी को जिस लोक के दर्शन कराए थे उस लोक में ये सब विविधताएं, ये सब आनंद था। उसके बाद उसी बात को बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ददर्श तत्रा किल सात्वतम पतिम श्रिया पतिम यज्ञपतिम जगतपतिम सुनंदनंद प्रबलार्हणादि भी स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम ददर्श तत्रा किल सात्वतं पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम ददर्श तत्राखिल सात्वतां पति। ददर्श अर्थात ब्रह्मा जी ने देखा, तत्र वहां मतलब वैकुंठ लोक में, अखिल संपूर्ण सात्वतां यानी परम भक्तों के पति, जितने भक्त हैं उनके स्वामी को, श्रियपतिम अर्थात लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के स्वामी को, यज्ञपति अर्थात यज्ञ के स्वामी को, जगतपतिम अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी को, सुनंदनंद सुनंद अर्थात सुनंद, नंद अर्थात नंद, प्रबल अर्थात प्रबल, अर्हण अर्थात अर्हण, आदि भी आदि से, स्वपार्षद स्वपार्षद मतलब अपने संगी, अग्रे यानी अग्रणी, परिसेवितम दिव्य प्रेम में सेवित विभूम परम शक्तिशाली। अनुवाद, ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद सुनंद प्रबल तथा अर्हण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम राजा की बात करते हैं तो इससे यही समझा जाता है कि राजा के साथ उनके विश्वास पात्र पार्षद यथा उनका सचिव, निजी सचिव, मंत्री, सलाहकार रहते होंगे। इसी प्रकार जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके साथ उनकी विभिन्न शक्तियाँ, पार्षद, विश्वास पार्षद पात्र, सेवक आदि भी दिखते हैं। अतः परमेश्वर जो समस्त जीवों, समस्त भक्त संप्रदायों, ऐश्वर्यों, यज्ञों का स्वामी है और अपनी सारी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का भोक्ता है, ना केवल परम पुरुष है वरन अपनी दिव्य सेवा करने वाले पार्षदों से निरंतर घिरे रहते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से बताया कि भगवान के वैकुंठ में भगवान अकेले थोड़ी रहेंगे, जाहिर सी बात है, राजा है तो उनके सारे सहचरी, उनके सारे मंत्र, उनके सारे सलाहकार, विश्वास पात्र सब हैं और उनकी प्रियतमा लक्ष्मी महारानी है जो उनकी सेवा कर रही हैं। और लक्ष्मी महारानी भी अकेले नहीं होंगी, उनकी बहुत सारी सेविकाएं पर उनकी सखियां सब होंगी। तो कितना विशाल और कितना सुंदर ये दृश्य है जहाँ वैकुंठ में ब्रह्मा जी जो देख रहे हैं अपने तपस्या के द्वारा। और भगवान कहते हैं उस धाम को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो यदि आप मेरी भक्ति करते हो। और उस वैकुंठ लोक में भगवान कैसे दिख रहे थे उसके विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान को कैसा देखा, वृत्या प्रसादा विमुखम दृगासवम प्रसन्नहासा ऋणलोचनाननम किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीताशुकम व शशिलक्षितम श्रिया वृत्या प्रसादा विमुखम दृगासवम प्रसन्नहासा ऋणलोचनाननम किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीताशुकम व शशिलक्षितम श्रिया वृत्य प्रसादा। वृत्य मतलब दास, प्रसाद अर्थात स्नेह, अभिमुखम दृक् यानी दृष्टि, आसवम यानी मादक पदार्थ, प्रसन्न हास अरुण लोचना, प्रसन्न मन अत्यंत ही प्रसन्न, हास अर्थात मुस्कुराते हुए या हंसी हंसते हुए, अरुण लोचनम लाल नेत्र, आननम मतलब मुख इतना सुंदर, किरीटिनम मुकुट युक्त, कुंडलम कुंडलों सहित, चतुर्भुजम चार भुजाओं से युक्त, पीत अर्थात पीताशुकम मतलब पीले कलर का वस्त्र धारण करते हुए, वक्षसी छाती पर, लक्षितम श्रिया अर्थात अंकित जो भगवान के वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र है उसके विषय में बता रहे। अनुवाद, अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए भगवान सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए थे, लक्ष्मी महारानी उनकी सेवा करके गुणगान कर रही थी और भगवान जो है वो अपने सारे दासों के ऊपर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। मादक यथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे, भगवान आनंद से संतुष्ट से जिसकी ओर देख रहे थे तो बहुत ही सुंदर और मुस्कुराते हुए उनको देख रहे थे। भगवान बहुत आनंदित लग रहे थे, उनका मुस्कुराता हुआ मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था, वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे, उनके चार हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखा कृतियों से चिन्हित था। श्री प्रभुपाद देखिए जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पद्म पुराण के उत्तर खंड में योग पीठ का अर्थात उस स्थान का जहाँ भगवान अपने नित्य भक्तों के को दर्शन देते हैं पूर्ण वर्णन दिया गया है। उस योग पीठ में साक्षात धर्म ज्ञान ऐश्वर्य तथा त्याग भगवान के चरण कमलों पर आसीन है। वहाँ पर ऋक साम यजुर यथा अथर्व ये चारों वेद भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित हैं। चंड आदि सोलहों शक्तियाँ वहाँ विद्यमान हैं। चंड तथा मुकुंद प्रथम दो द्वारपाल हैं। बीच के द्वार पर भद्र तथा सुभद्र और अंतिम द्वार पर जय तथा विजय है। कुमुद कुमादाक्ष और पुंडरीक वामन शंकुकरण सर्वनेत्र सुमुख आदि अन्य द्वारपाल भी हैं। भगवान का महल अच्छी तरह सजा हुआ तथा उपर्युक्त द्वारपालों द्वारा रक्षित है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के जो भगवान का जो योग पीठ है उसके अंदर कितनी कितनी विविधताएं, जो कि पद्म पुराण में किस तरह से उसको सुंदरता से वर्णन किया गया उसके विषय में बता रहे हैं। और क्यों न हो, वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है और भगवान है, और भगवान के पास इतना सारा ऐश्वर्य नहीं होगा तो किसके पास होगा। भौतिक जगत में भी तो थोड़ा सा धनवान होता है, उसके भी बहुत सारे गार्ड होते हैं, बाहर दरवाजों के पीछे बाहर खड़े होते हैं, अंदर की तरह सेवा करने वाले होते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत का ऐश्वर्य तो तुच्छ है। भगवान का ऐश्वर्य इसके से तो करोड़ों गुना ज्यादा है। तो डेफिनेटली जो भगवान के नाम को प्राप्त करेगा उसके लिए संसार में और कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है जिसकी ओर वो आकर्षित हो सके। लेकिन ये हमारी मूर्खता है कि हम संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान के धाम में जाने की कोई चिंता नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते। आगे सुखदेव गोस्वामी भगवान के अन्य ऐश्वर्यों के विषय में बताते हुए कहते हैं, अत्यर्हणीया सनमास्थितं परम वृतम चतुषो दश पंच शक्ति युक्त भगै स्वय ऋतरत्र चाध्रुवै स्वैव धामन रममाणमीश्वरम् अद्यर्हणीया सनमास्थितं परम वृतम चतुषो दश पंच शक्तिभिः युक्तं भगै स्वाय ऋतरत्र चाध्रुवै स्वैव धामन रममाणमीश्वरम् अद्यर्हणी अर्थात अत्यंत पूज्य आसनम सिंहासन पर आस्थितम बैठे हुए परम यानी परमेश्वर वृतम चतु षोडश पंचशक्ति भी वृतम मतलब गिरे हुए थे किससे चतु चार प्रकृति पुरुष महत तथा अहंकार मतलब चार प्रकृति पुरुष महत तथा अहंकार से षोडश अर्थात सोलह पंच अर्थात पांच शक्ति भी अर्थात शक्तियों से युक्तम यानी युक्त भगय अर्थात ऐश्वर्य से भग माना ऐश्वर्य स्वय यानी अपने इतरत्र अर्थात अन्य छोटे छोटे प्राक्रम च भी अध्रुवय यानी क्षणिक स्वय एव स्वय माना अपने एव माना निश्चय ही धामन यानी धाम में रममाणम अर्थात रमण करते हुए ईश्वरम परमेश्वर अनुवाद भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा चार सोलह पांच तथा छह प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से गिरे हुए थे किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अपने छह ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं, विशेषतः वे सबसे धनी सर्वशक्तिमान सर्वाधिक प्रसिद्ध सर्वाधिक सुंदर सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी होते हैं और उनकी चार भौतिक सर्जनात्मक शक्तियों के लिए प्रकृति पुरुष महतत्व के सिद्धांत तथा अहंकार तो उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं। 5 तत्व पृथ्वी जल सॉरी क्षिति जल पावक गगन समीर, 5 ज्ञानेन्द्रिया नाक कान आंख जीभ तथा त्वचा तथा 5 कर्मेन्द्रिया हाथ पांव पेट, मल त्याग इंद्रिय मूत्र तथा जननेन्द्रिय तथा मन, 5 के अंतर्गत रूप स्वाद गंध शब्द तथा स्पर्श नामक 5 तन्मात्राएं आती हैं। ये 25 शक्तियां सृष्टि करते समय भगवान की सहायक बनती हैं और भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लग रहते हैं। लघु ऐश्वर्य की संख्या 8 है। अस्थाई प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की गई अष्ट सिद्धियां और ये भी उनके वश में रहती हैं, किंतु बिना प्रयास के इन समस्त शक्तियों से स्वाभाविक रूप से पूर्ण रहते हैं और इस कारण ही वे परमेश्वर हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि जितनी भी शक्तियां हैं अष्ट सिद्धियां नवनिधियां 25 तत्व मन बुद्धि अहंकार ये सब स्वरूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान हैं, तो भगवान की सेवा में ही सब रहते हैं। और अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज आ जाती हैं। इसी श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी शक्ति से ही किसी भी योगी से कहीं अधिक शक्तिमान है, किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान है, किसी भी धनी की तुलना में अत्यंत धनवान है, किसी भी सुंदर जीव की अपेक्षा अत्यंत रूपवान तथा किसी भी उपकारी से की उपेक्षा अधिक दानी है। वे सर्वोपरि हैं, कोई ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। कोई कितना ही तप या योगिक प्रदर्शन क्यों न करे, उपर्युक्त किन्हीं भी शक्तियों में उनकी समता नहीं कर सकता। योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दान शक्तिशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ अस्थाई शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को जो भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हमारे लिए चॉइस है ना, ज्ञानी बन के भगवान से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या अष्टांग योग करके भगवान से कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, या भगवान की शुद्ध सेवा करके भगवान की शुद्ध भक्ति अन्य अभिलाषिता शून्य होकर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो बदले में जानते हो क्या मिलता है। भगवान के श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे जो शुद्ध भक्त यानी कि यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते अपने शुद्ध भक्तों को जो भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा की बदली में अपने आप को दे डालते हैं। जिनके भगवान हो जाते हैं क्या उनके पास कुछ और प्राप्त करने के लिए रह जाता है? इसलिए बुद्धिमानता यही भगवान कहते बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यदि बुद्धि होगी ना तो और कोई काम नहीं करोगे, केवल मेरी सेवा निष्काम सेवा अनन्य भक्ति अन्य अभिलाषा शून्य भक्ति जब हम भगवान के करते हैं तो संपूर्ण सौंदर्य संपूर्ण ऐश्वर्य संपूर्ण धन संपूर्ण शक्ति संपूर्ण वैराग्य संपूर्ण बल सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के इस सुंदर स्वरूप को भगवान के इन सब लोकों में जो विविधताएं थी जो सौंदर्य था जो तेज था जो अकल्पनीय ऐश्वर्य था उसको देखकर ब्रह्मा जी की क्या दशा हुई उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत्दर्शनालाद परिप लुतांतरो ऋष्यत्तनो प्रेम भरा श्रुलोचन ननाम पादाम भुजमस्य विश्वसे यत्पारमस्येन यथा दिगम्यते यद्दर्शनह्लादपरिप्लुतान्तरो ऋष्यत्तनो प्रेम भरा श्रुलोचन ननाम पादाम भुजमस्य विश्वसृग् यत्पारमस्येन यथा दिगम्यते तद्दर्शन तद् मन भगवान के उस दर्शन यानी दर्शन से आलाद अर्थात प्रसन्नता परिप्लुत लबालब भरा हुआ आप्लवित अंतर यानी हृदय के भीतर ऋष्यत पुलकित हो गया यानी इतना आनंद आ रहा था इतना पुलकित हो रहा था तनु शरीर और प्रेम भरा अर्थात पूर्ण दिव्य प्रेम में अश्रु यानी आंसू लोचन यानी आंखों से हृदय इतना आनंदित हो गया और प्रेम से भरपूर नेत्रों से अश्रु धाराएं बहने लगी और ननाम यानी नतमस्तक हुआ पादाम भुजम चरण कमलों पर भगवान के चरण कमलों पर नतमस्तक होकर अस्य विश्वसृक् अस्य यानी भगवान को विश्वसृक् यानी भगवान के सृष्टा यत जो पारमहंस्येन यानी परम मुक्त पुरुष द्वारा यथा पथ पथा यानी पथ अधिगम्य यानी अनुसरण किया जाता है। अनुवाद इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से अप्लावित होता और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं सिद्धि क्या है भगवान की शरणागति स्वीकार करना भगवान के लिए हृदय में प्रेम का उदय होना भगवान को आत्मसमर्पण करने का भाव उत्पन्न होना। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान ग्रंथ परम हंसों के लिए है परमो निर्मत शरणम सताम। तो ये श्रीमद् भागवतम ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त पुरुषों के लिए है। बद्ध जीव में ईर्ष्या सबसे ऊपर से अर्थात श्री भगवान के विरुद्ध ईर्ष्या रखने से शुरू होती है। सभी शास्त्र भगवान की सत्ता को मानते हैं और श्रीमद् भगवत गीता में तो परमेश्वर के सगुण रूप का विशेष वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि इस ग्रंथ के अंत में इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन के क्लेशों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान की शरण में जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते और हर व्यक्ति बिना किसी योग्यता के ईश्वर बनना चाहता है। बद्ध जीवों का यह ईर्ष्यालु स्वभाव ईश्वर के साथ तदाकार होने की अवस्था तक बना रहता है। अतः बड़े से बड़ा दार्शनिक भी जो ईश्वर के साथ तदात्म्य जाता है अपने ईर्ष्यालु मन के कारण कभी भी परमहंस नहीं बन सकता। अतः जो लोग भक्ति योग में रत हैं केवल वे ही जीवन की परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यदि मनुष्य का यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि दिव्य प्रेम में भगवान की भक्ति करने मात्र से वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है तो बस वहीं से भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि परमहंस के लिए ये श्रीमद् भागवतम ईर्ष्यालुओं के लिए नहीं है। भगवान का इतना ऐश्वर्य देखकर हृदय में ऐसा आता है कि केवल भगवान ही आनंद करता है ऐसा आनंद हम भी इस भौतिक जगत में करें या फिर हमें भी करना चाहिए तो ये केवल ईर्ष्या के कारण है और ईर्ष्या जब तक हृदय में होगी तब तक भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। भगवत धाम प्राप्त करने की योग्यता क्या है कि जब जीव पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागति स्वीकार करता है और अपने आप को भगवान का दास समझता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे, यदि मनुष्य का यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि दिव्य प्रेम में भगवान की भक्ति करने मात्र से वह परम सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तो बस वहीं से भक्ति योग शुरुआत हो जाती है। ब्रह्मा जी को इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था। उन्होंने भगवान द्वारा तप करने के आदेश पर विश्वास किया और कठिन तप के द्वारा वैकुंठ लोक तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। कोई भी मनुष्य मन या मशीन के साधनों द्वारा परमेश्वर के धाम तक नहीं पहुंच सकता। केवल भक्ति योग के बल पर वे वैकुंठ लोक को जा सकता है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान ने कह दिया, ना हम वेदर न तपसा न दान न चेष्टा, न मैं वेदों के पढ़ने से प्राप्त हो सकता हूँ, न दान करने से, न ही कोई और साधना करने से। मुझे प्राप्त करने के लिए केवल एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है, और वो क्या है? भक्त्या तनन्या शक्त अहमेव विदोर्जना। यदि मुझे प्राप्त करना है तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर विराजमान थे और वे वहीं से अत्यंत गंभीरता पूर्वक भक्ति योग की साधना द्वारा चित्र विचित्र वैकुंठ लोक को भगवान तथा उनके पार्षदों सहित देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान की असीम कृपा थी कि भगवान ने अपने इतने सुंदर वैकुंठ लोक के दर्शन कराए। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी बहुत आनंदित हुए। ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी कोई व्यक्ति यहाँ पर बताए परमहंस के पथ पर चलकर वैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग में मनुष्यों के लिए आत्म साक्षात्कार की इस विधि की संस्तुति की है। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखे। भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रद्धा और विश्वास। यदि भगवान के अंदर पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, आदो श्रद्धा, तभी जीव आगे बढ़ सकता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, चिंतन द्वारा समझने करने का कोई प्रयत्न न करे, पहले श्रीमद् भगवत गीता से उनके विषय में सुने और फिर श्रीमद् भागवतम से सुने। ऐसे उपदेशों को वह भागवत व्यक्ति से सुने। पेशेवर कथावाचक या किसी कर्मी यानी या योगी से नहीं। ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। मनुष्य को सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है, वह अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है, किंतु उसे भगवत भक्त की संगति ढूंढनी चाहिए और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उससे भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप सबको एक ही कार्य करना है कि शुद्ध भक्त की संगति ढूंढनी है और श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनिए। तो सदैव आप सब भगवान से यही प्रार्थना करो कि हमको किसी शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो और उसके मुख से जब हम भगवान की लीलाएं सुनेंगे तो अवश्य हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास, दृढ़ता और भक्ति के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण उत्पन्न होगा। जितना जितना हम सिंसियर हो जाएंगे उतना ही भगवान हमारी भक्ति में हमारी सहायता करेंगे। तो अगर हम सिंसियरिटी के साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करें और हम उनके द्वारा उनके मुख से भागवतम श्रवण करना चाहते हैं, तो भगवान अवश्य हमारी इस मनोकामना को पूरा करेंगे और इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। भगवान के श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के अनेक पवित्र नामों में से अजित भी एक नाम है, जिसका अर्थ है कि किसी दूसरे के द्वारा कभी न जीते जाने वाला, फिर भी उन्हें परमहंस पथ से जीता जा सकता है। जैसा कि परम गुरु ब्रह्मा ने करके दिखाया, ब्रह्मा ने स्वयं इस परमहंस पंथा को श्रीमद् भागवतम 10.14.3 में अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सम्मुखरिता भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिकथां तनुवां मनोम्रिये प्रायशोजित जितोऽप्यसि त्रयस्त्रलोक्यां।
ब्रह्माजी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने के उद्देश्य से चिंतन मार्ग को त्याग कर प्रामाणिक गुरु साधु या संत से आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में वृत्ति परक कर्तव्य का पालन करता हुआ निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वह आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है। यद्यपि आप अजित हैं, यही परम हंसों का पथ है जिसका अनुसरण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया और बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए औरों के लिए इसकी संस्तुति की है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर और सरल बात बताई जा रही है कि जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने के उद्देश्य से चिंतन मार्ग को त्याग कर दो, कि सबसे पहले क्या करना है, भगवान के साथ अंदर मिलने की जो का उद्देश्य है उसको छोड़ देना है, बल्कि क्या करना है, प्रामाणिक साधु या संत से भगवान की महिमा को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के नाम की महिमा को, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे और अपने सामाजिक जीवन के वृत्तिपरक कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। ऐसा नहीं सब छोड़ छाड़ के केवल यही तो कर्तव्यों, भगवान भी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरय युद्धे च, कर्तव्यों का, और हृदय के अंदर कोई कपट नहीं होना चाहिए, निष्कपट जीवन व्यतीत करता है वो ही भगवान की दया को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी बताते हैं, भगवान अजित है लेकिन फिर भी ये वो पथ है जिसके द्वारा अजित भगवान को जीता जा सकता है, जिसका अनुसरण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया और बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए औरों को इसी की संस्तुति की है। तो हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी के से परमहंस गुरु के शरण में हम इस ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, तो इसके द्वारा इनकी आदेशों का पालन करके निष्कपट जीवन बिताते हुए हम अवश्य भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।